सुर्खियों में
नमस्कार श्रोताओं, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुबोध मिश्र और आज हम चर्चा करेंगे मन की बात के 132वें एपिसोड पर। इस पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन जी। अशोक जी, सुर्खियों में आपका स्वागत है।
नमस्कार
अशोक जी, मन की बात के 132वें एपिसोड में प्रधानमंत्री ने जिन वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख किया है, उनमें भारत की भूमिका और तैयारी को आप किस रूप में देखते हैं?
आमतौर पर प्रधानमंत्री अपनी मन की बात में देश की जनता के साथ संवाद करते हैं, लेकिन ये मन की बात का जो 132वीं कड़ी है, ये कुछ विशेष परिस्थितियों में आज हुई। इसलिए मैं अगर ये कहूंगा कि आज की मन की बात के पहले भाग में प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम एक संदेश के तौर पर उसकी शुरुआत की थी, क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री ने भी कहा कि जैसे हम सबको याद है कि पूरा विश्व पहले कोविड के कारण एक लंबे समय तक अनेक समस्याओं से गुजरा था और हम सभी की अपेक्षा भी थी कि कोरोना के संकट से निकलने के बाद दुनिया नए सिरे से प्रगति की राह पर आगे बढ़ेगी, लेकिन अभी जिस तरह से परिस्थिति बन रही है कि दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में लगातार युद्ध और संघर्ष की परिस्थितियां बनती चली गई हैं, और अभी वर्तमान में भी जैसा प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हमारे पड़ोस में एक माह से भीषण युद्ध चल रहा है, हमारे लाखों परिवारों के सगे संबंधी इन देशों में रहते हैं और खास तौर पर खाड़ी देशों में काम करते हैं, तो उसके लिए प्रधानमंत्री ने पहले तो खाड़ी देशों को बहुत बहुत आभार व्यक्त किया कि वो ऐसे 1 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को वहां पर हर प्रकार की सहायता कर रहे हैं। लेकिन फिर उन्होंने देश के नाम अपील करते हुए उन्होंने आग्रह किया कि हमें एकजुट होकर इस चुनौती से बाहर निकलना है। जो लोग इस विषय पर भी राजनीति कर रहे हैं, उन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये देश के 140 करोड़ देशवासियों के हित से जुड़ा विषय है, इसमें स्वार्थ भरी राजनीति का कोई स्थान नहीं है। ऐसे में जो लोग भी अफवाह फैला रहे हैं, वे देश का बड़ा नुकसान कर रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों से अपील की और कहा कि वो जागरूक रहें, अफवाहों के बहकावे में ना आएं, सरकार की तरफ से जो भी निरंतर जानकारी दी जा रही है उस पर भरोसा करें और उसी पर विश्वास करके ही कोई ठोस कदम उठाएं। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे हर बार की तरह इस बार भी विश्वास है कि जैसे हमने देश के 140 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य से पुराने संकटों को हराया है, इस बार भी हम सब मिलकर इस कठिन स्थिति को बहुत अच्छी तरह से उसमें से बाहर निकलेंगे। ये जो आज अपील की प्रधानमंत्री ने विशेष तौर से, इसलिए मैंने कहा कि आज इनके मन की बात का पहला भाग तो देश के नाम संदेश जैसा था, और इसीलिए उन्होंने ये भी कहा कि जिन क्षेत्रों में युद्ध चल रहा है, वह क्षेत्र अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का बहुत बड़ा केंद्र है और इसी वजह से दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल को लेकर संकट की स्थिति बनती जा रही है, और हमारे वैश्विक संबंध, जैसे आपने शुरू में कहा, अलग अलग देशों से मिल रहा सहयोग और पिछले एक दशक में देश का जो सामर्थ्य बना है, उनकी वजह से भारत इन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला कर रहा है।
जी हाँ, आगे बढ़ने से पहले अशोक जी, आइए हम सुन लेते हैं। पहले जो आपने उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री ने संकटग्रस्त क्षेत्र है, वहां रह रहे भारतीयों के बारे में जो कुछ कहा है, उस पर जो चिंता व्यक्त की है, उसके बारे में सुनते हैं।
हमारे लाखों परिवारों के सगे संबंधी इन देशों में रहते हैं, खासतौर पर खाड़ी देशों में काम करते हैं। मैं गल्फ कंट्रीज का बहुत आभारी हूं, वे ऐसे 1 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को वहां पर हर प्रकार की मदद दे रहे हैं। जो लोग इस विषय पर भी राजनीति कर रहे हैं, उन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए। यह देश के 140 करोड़ देशवासियों के हित से जुड़ा विषय है, इसमें स्वार्थ भरी राजनीति का कोई स्थान नहीं है। मैं सभी देशवासियों से अपील भी करूंगा कि वो जागरूक रहे, अफवाहों के बहकावे में ना आए, सरकार की तरफ से जो आपको निरंतर जानकारी दी जा रही है उसी पर विश्वास करके कोई कदम उठाए।
अशोक जी, हम फिर से ऊर्जा पर अपनी बातचीत जारी रखते हैं, क्योंकि आपने जैसा बताया कि प्रधानमंत्री ने ऊर्जा संकट के बारे में भी कहा है और वैकल्पिक ऊर्जा, इन दोनों का उल्लेख किया है उन्होंने इस बार मन की बात में। तो आइए पहले सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने सोलर एनर्जी के बारे में क्या कहा है।
आज पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का प्रभाव देश के कोने कोने में दिखने लगा है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का फायदा नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में भी मिल रहा है। त्रिपुरा में रियांग जनजाति के कई गांव ऐसे थे जहां बिजली की समस्या थी, अब सोलर मिनी ग्रिड के माध्यम से वहां के घरों में रोशनी रहती है। देश में सोलर ऊर्जा क्रांति के ऐसे न जाने कितने उदाहरण हैं। आप भी इस क्रांति से जुड़िए और दूसरों को भी जोड़िए।
प्रधानमंत्री ने ऊर्जा संकट के बीच संतुलन बनाए रखने का भी जिक्र किया है।
जिस क्षेत्र में अभी युद्ध चल रहा है वह क्षेत्र हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा केंद्र है। इसकी वजह से दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल को लेकर संकट की स्थिति बनती जा रही है। हमारे वैश्विक संबंध, अलग अलग देशों से मिल रहा सहयोग और पिछले एक दशक में देश का जो सामर्थ्य बना है, इनकी वजह से भारत इन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला कर रहा है।
अशोक जी, अभी हमने प्रधानमंत्री के विचार सुने, उन्होंने जिस तरह से हमें ऊर्जा संकट के बारे में आगाह किया है और जैसे उन्होंने सोलर एनर्जी की बात की है, क्या लगता है कि अभी जो परिदृश्य है उसमें हमारी ऊर्जा की चिंताएं कितनी बड़ी हैं?
देखिए, उसकी चिंता के बारे में प्रधानमंत्री ने तो बात की है और हम भी इसके बारे में कह ही चुके हैं कि जो इस समय परिस्थितियां है उसमें देशवासियों को सतर्क रहना है और ये भी ध्यान देना है, क्योंकि जिन क्षेत्रों में जो युद्ध चल रहा है वो क्षेत्र हमारी ऊर्जा आवश्यकता का भी बड़ा केंद्र है और इसकी वजह से दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल को लेकर संकट की स्थिति बनती जा रही है। तो हमारे वैश्विक संबंध अलग अलग देशों से मिल रहे हैं, लेकिन उसके लिए उन्होंने जो डटकर मुकाबला करने के संदर्भ में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, जैसा अभी हम सुन भी रहे थे, वो थी सोलर एनर्जी के बारे में। तो सोलर एनर्जी के बारे में उन्होंने जो कहा कि बड़ी अच्छी पहल हमको दिखाई दे रही है देश के विभिन्न हिस्सों में और ये देखने में आ रहा है कि लोग जो हैं वो किस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि एक बदलाव लोगों ने भी देखा होगा कि बड़ी संख्या में लोग घर की छतों पर सोलर पैनल लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ साल पहले तक तो ये इक्का दुक्का घरों पर दिखता था, लेकिन आज पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का जो प्रभाव देश के कोने कोने में दिखने लगा है, तो इस योजना की वजह से गुजरात के सुरेंद्र नगर जिले की पायल मुंजपारा के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया, ये उदाहरण दिया प्रधानमंत्री ने। और उन्होंने कहा कि सूर्य पहल के माध्यम से सोलर पावर टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग ली गई है और उस महिला ने ली और 4 महीने का सोलर पीवी टेक्नीशियन का कोर्स पूरा किया, अब वो एक कुशल सोलर टेक्नीशियन बन गई हैं। तो ये जो उद्यमी के तौर पर उन्होंने जो पहचान बनाई है, तो वो आसपास के जिलों में सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन का काम करती हैं और हजारों रुपए भी कमा रही हैं। तो अब लोग जो हैं वो अपने अपने इलाका में ऊर्जा दाता बन रहे हैं। इसका उदाहरण उन्होंने मेरठ के अरुण कुमार का दिया, हाल ही में दिल्ली में हुए कार्यक्रम में अरुण कुमार ने हिस्सा लिया और अपने अनुभव साझा किए और बताया कि वो न केवल बिजली बिल की बचत कर रहे हैं बल्कि अपनी अतिरिक्त बिजली बेच भी रहे हैं। इसके बारे में प्रधानमंत्री ने जानकारी दी। तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का फायदा नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में भी मिल रहा है और त्रिपुरा में तो उन्होंने ये कहा कि रियांग जनजाति के कई गांव ऐसे थे जहां बिजली की समस्या थी, अब सोलर मिनी ग्रिड के माध्यम से वहां के घरों में रोशनी आती है, वहां बच्चे अब शाम के बाद भी पढ़ रहे हैं, लोग मोबाइल को भी चार्ज कर रहे हैं। तो इससे गाँव में बड़ा सामाजिक परिवर्तन भी आया है और देश में सोलर ऊर्जा क्रांति के ऐसे ना जाने कितने उदाहरण हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अब आप देशवासी भी इस क्रांति से जुड़िए और दूसरों को भी जोड़िए। ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश आज प्रधानमंत्री ने दिया।
ऊर्जा के बाद हम आते हैं जल पर, क्योंकि जल संरक्षण और सामुदायिक प्रयासों के जो उदाहरण देख रहे हैं हम, क्या ये कहा जा सकता है कि सरकार की योजनाएं अब जन आंदोलन का रूप ले रही हैं? आपके विचार सुनने से पहले हम देखते हैं कि जल संकट पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा है।
पिछले 11 वर्षों में जल संचय अभियान ने लोगों को बहुत जागरूक बनाया है। इस अभियान के तहत देश भर में करीब 50 लाख आर्टिफिशियल वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। जल संकट से निपटने के लिए गांव-गांव में सामुदायिक स्तर पर प्रयास होने लगे हैं। अमृत सरोवर अभियान के तहत भी देश भर में करीब 70,000 अमृत सरोवर बनाए गए हैं।
अशोक जी, जल संरक्षण की दिशा में जो कुछ हो रहा है उस पर आपके विचार।
प्रधानमंत्री ने ये अभी जैसा हमने सुना कि अमृत सरोवर अभियान के तहत भी देशभर में करीब 70,000 अमृत सरोवर बनाए गए, तो बारिश का मौसम आने से पहले इन सरोवरों की साफ सफाई भी शुरू हो गई है। और उसके लिए उन्होंने कुछ बड़े प्रेरणादायक उदाहरण भी साझा किए। जैसे उन्होंने कहा कि त्रिपुरा की जम्पुई पहाड़ियों में बसा वांगमुन गांव 3,000 फीट की ऊंचाई पर बसा है। ये गांव अपने पानी की गंभीर संकट का सामना कर रहा था और गर्मियों के दिनों में गांव के लोग पानी के लिए लंबी दूरी तय करते थे। आखिरकार गांव के लोगों ने बारिश की हर बूंद को सहेजने का निर्णय लिया और आज वांगमुन गांव के लगभग हर घर में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित किया गया है। जो गांव कभी पानी की कमी से जूझ रहा था वो आज जल संरक्षण का एक मिसाल बन गया है। इसी तरह से उन्होंने छत्तीसगढ़ की भी बात की और यहाँ के किसानों ने बड़े ही एक सरल लेकिन प्रभावशाली तरीके पर काम किया। यहाँ के किसानों ने अपने खेतों में छोटे छोटे रिचार्ज तालाब और स्वच्छता गड्ढे बनाए हैं, जिससे बारिश का पानी खेतों में ही रुकने लगा और धीरे धीरे वह जमीन के अंदर जाने लगा। और अब आज इस क्षेत्र के 1200 से अधिक किसान इस मॉडल को अपना चुके हैं और गांव का ग्राउंड वाटर लेवल बहुत बेहतर हो गया है। इसी तरह तेलंगाना के जिले की मुदीगुंटा गांव की भी उन्होंने चर्चा की। लोगों ने मिलकर पानी की समस्या दूर की है। गांव के 400 परिवारों ने अपने घरों में सोक पिट बनाया है और वाटर कंजर्वेशन का जन आंदोलन बना दिया है और इससे गांव का ग्राउंड वाटर लेवल बहुत बेहतर हुआ है और साथ ही में प्रदूषित पानी की वजह से होने वाली बीमारियों की भी कमी आई है। तो ये जो जल संवर्धन की बात है, प्रधानमंत्री लगभग अपने हर मन की बात के एपिसोड में इस ओर ध्यान देते रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है और उसको जन आंदोलन बनाना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए ये बारिश के मौसम के आने से पहले के एपिसोड में प्रधानमंत्री ने इस ओर देश का ध्यान दिया है।
और अशोक जी, प्रधानमंत्री युवाओं का उल्लेख भी लगभग हर बार करते हैं। युवाओं को नीति निर्माण, बजट प्रक्रिया और राष्ट्र निर्माण से जोड़ने की जो पहल चल रही है, क्या ये हमारे भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम है?
बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि युवाओं को तो प्रधानमंत्री हर मन की बात के एपिसोड में उनसे संवाद करते हैं और इस बार तो उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की कि राष्ट्र निर्माण का ये जो दायित्व है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश है और हमारे देश की युवा शक्ति जो है वो राष्ट्र निर्माण में जुड़ी भी हुई है, लेकिन माई भारत संगठन है, ये संगठन देश के युवाओं को अलग अलग पॉजिटिव गतिविधियों से जोड़ रहा है। और हाल ही में माई भारत द्वारा बजट क्वेस्ट नाम का एक आयोजन किया गया था। इसका मकसद था देश के युवाओं को बजट प्रक्रिया और नीति निर्माण से जोड़ना। पहली बार ये बात सामने आ रही है कि बजट के संदर्भ में भी और नीति निर्माण के संदर्भ में भी युवाओं को किस तरह से जोड़ा जा रहा है। और इससे जुड़ी क्विज में देश भर के लगभग 12 लाख युवाओं ने हिस्सा लिया था और क्विज के बाद करीब 1,60,000 प्रतिभागियों को निबंध प्रतियोगिता के लिए चुना गया। और प्रधानमंत्री ने कहा कि इनमें से कुछ निबंध पढ़ने का उनको भी अवसर मिला है और ये जो युवा साथी हैं देश के विकास में अपना योगदान देने के लिए कितने तत्पर हैं, इसका उदाहरण दिया उन्होंने कि तेलंगाना के सूर्यापेट के रघुवीर रेड्डी और उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से सौरभ वैसवाल और बिहार के गोपालगंज से सुमित कुमार ने किसान कल्याण से जुड़े टॉपिक पर लिखा। पंजाब के मोहाली से आंचल और उड़ीसा के केंद्रपाड़ा से ओम प्रकाश रथ ने विमेन लेड डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के तरीकों पर विचार किया और हरियाणा के यमुनानगर से प्रथम बरार ने लिखा कि ग्रीन और क्लीन भारत ही समृद्ध भारत का मार्ग है। इससे उनकी सोच कितनी है इसका पता चलता है। तो ये जो एक स्किल डेवलपमेंट और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी लोगों ने अपने विचार साझा किए, तो युवाओं की प्रधानमंत्री ने सराहना करते हुए कहा कि जो लोग अपना आइडिया शेयर कर रहे हैं ये विचार देश के लिए और आगे ले जाने में बहुत महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। तो युवाओं को एक तरह से प्रोत्साहित भी किया है, उनके किए हुए काम की चर्चा भी की है और उनका नाम लेकर उनको प्रोत्साहित किया है।
अशोक टंडन जी, आपने बहुत विस्तार से मन की बात के कई पहलुओं पर अपने विचार साझा किए। अत्यंत सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार।
श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
सुर्खियों में